नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि इब्रानियों का लेखक कहता है कि प्रभु यीशु मलकीसेदेक की रीति पर हमारा महायाजक है। मलकीसेदेक का अर्थ है धार्मिकता का राजा। हमारा प्रभु यीशु भी धार्मिकता का राजा है, वह हमारी धार्मिकता है। मलकीसेदेक शांति का राजा था, प्रभु यीशु शांति का राजकुमार है। अतः मलकीसेदेक हमारे प्रभु यीशु का प्रतीक है। हमने इन बातों को पिछले अध्ययन में देखा था और आज हम अपने अध्ययन में लगातार आगे बढ़ेंगे, परंतु इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जब हम आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं और मनन चिंतन कर रहे हैं तो आप प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि प्रत्येक जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो इस समय आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं परंतु बीमार अवस्था में हैं, निराश और चिंतित हैं, परेशान और तनाव में हैं। पिताजी, आप उन्हें शांति प्रदान कीजिए, उनके बीमारों से आप उन्हें छुटकारा दीजिए ताकि हर एक जीवन आप में धन्य होने पाए। आज के वचन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम सब आगे बढ़ेंगे और इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसके 3 पद से पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। अब यहाँ मलकीसेदेक को एक अन्य रूप में प्रभु यीशु का प्रतीक दर्शाया जा रहा है। प्रभु यीशु अनादि समय से निकलकर आया था और अनंत समय में प्रवेश कर गया। उसका ना तो आरंभ था और ना ही उसका अंत है। वह आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। आप न तो अतीत में उसके पीछे जा सकते हैं और न ही भविष्य में उसके आगे जा सकते हैं। उसी में संपूर्ण समय और अनंत काल है। अब आपको ऐसा मनुष्य कहाँ मिलेगा जिसमें यह सब प्रकट हो? वंशावलियों की पुस्तक उत्पत्ति में वंशावलियां दी गई हैं कि आदम का पुत्र कौन था और उसका पुत्र कौन था और उसका पुत्र कौन था, और इस प्रकार अब्राहम का पुत्र इसहाक और इसहाक के पुत्र याकूब और एसाव थे। इसी पुस्तक में मलकीसेदेक कहीं से प्रकट होता है और फिर उसका उल्लेख नहीं है। परमेश्वर ने मलकीसेदेक की वंशावली का उल्लेख क्यों नहीं किया है? क्योंकि मलकीसेदेक प्रभु यीशु के याजक होने का प्रतीक है। भजन संहिता 110 में हम देखते हैं कि मलकीसेदेक प्रभु यीशु का प्रतीक है। जी हाँ, प्रभु यीशु अनंत परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र होने के कारण वह एक याजक है। वह सदा सर्वदा का याजक है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि मलकीसेदेक अब्राहम के पास सही समय पर आया था। वह अब्राहम की परीक्षा का समय था और अब्राहम को प्रोत्साहन और बलवर्धन की आवश्यकता थी। मलकीसिदक भोजन लेकर आया था और वह परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। धर्मशास्त्र में पहली बार परमेश्वर को परम प्रधान परमेश्वर कहा गया है। वह उस समय आया जब सदोम का राजा अब्राहम को भेंट अर्पित करना चाहता था। उसने कहा, अब्राहम, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी प्रजा को छुड़वाया। आपको तो दास बनाना सुहाता नहीं है, इसलिए आप मेरी प्रजा मुझे वापस दे दें और लूट का सारा सामान आप रख लें। देखा जाए तो यह सब आप ही का है। उस युग में हम्मुरावी की व्यवस्था के अनुसार लूट का सब सामान अब्राहम का था, परंतु अब्राहम ने कहा, उत्पत्ति के पुस्तक 14 अध्याय उसके 23 पद में, मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ है। इसके बाद परमेश्वर अब्राहम पर प्रकट होकर कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसके 1 पद में, हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। मेरे मित्रों, मलकीसिदेक ने आकर अब्राहम की सेवा टहल की। प्रभु यीशु महायाजक है और वह हमारी सेवा करता है। यदि वह आपकी सेवा ना करे और आपके मन को आशीष ना दे तो निश्चय ही आपका विकास नहीं हुआ है। आप अब भी शिशु ही हैं। आप इस महान सत्य में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। मेरे विश्वासी मित्रों, क्या आप परेशानियों के गहरे जल से गुजरे हैं? क्या प्रभु यीशु ने वहां आपकी सेवा और सहायता की है? क्या आपको यह अनुभूति है कि वह प्रतिदिन आपको आशीष देता है? एक बार मैं अपनी प्रचार यात्रा पर बहुत बीमार था, जिसके कारण मुझे 2 दिन विलंब भी हुआ, परंतु परमेश्वर दयालु था। मौसम अच्छा था और हमारी यात्रा भी सुविधाजनक थी। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा महायाजक काम कर रहा है। वह अपना काम कर रहा था और आशीष भी दे रहा था। मैं ना तो कोई कल्पना या धर्म या संस्कार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक जीवित महिमामय मनुष्य के बारे में कह रहा हूं। वह जीवित परमेश्वर है। क्या वह आपके लिए जीवित परमेश्वर है? मेरे मित्रों, देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान परमेश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। आप और मैं उसी के संसार में वास करते हैं। उसने कहा कि सब कुछ हमारा है। क्या आप सूर्योदय का आनंद लेते हैं? आज सुबह मैंने पर्वतों के मध्य से सूर्योदय देखा। परमेश्वर ने मेरे ही लिए यह किया था। उसका कैसा अद्भुत प्रदर्शन था वह! वह स्वयं भी अद्भुत है। वह जीवित मसीह है। मैं उसे धन्यवाद कहता हूं कि उसने मुझे एक नया जन्म, नया दिन दिया है। मैंने उससे कहा कि मैं उससे प्रेम करता हूं। जीवित प्रभु यीशु स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। क्या वह आपके लिए सच्चा है? मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु सिद्ध याजक है। इब्रानियों के पत्री 7 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। अब्राहम ने मलकीसिदेक को दशमांश दिया। वह जानता था कि वह परम प्रधान परमेश्वर का याजक है, अतः उससे बड़ा है। इब्रानियों 7 के 5 में आगे लिखा है, लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों ना जन्मे हों, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लें। लेवी वंश अब्राहम के उत्तराधिकारी थे। अतः अब्राहम के द्वारा उन्होंने मलकीसेदेक को दशमांश चढ़ाया। इससे स्पष्ट है कि मलकीसेदेक हारून और उसके परिवार से बड़ा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के स्वामित्व को स्वीकार करने का एक तरीका यह भी है कि आप उसे भेंट चढ़ाएं। किसी कलीसिया या किसी संस्था को भेंट चढ़ाने से अधिक बड़ा है कि प्रभु यीशु को भेंट चढ़ाएं। आप उसके स्वामित्व को पहचानें। आप उसे भेंट चढ़ाते समय परमेश्वर के याजक हैं। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी ना था अब्राहम से दसवां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। आप सोचते हैं कि अब्राहम मलकीसेदेक से बड़ा था, परंतु यह सच नहीं है। मलकीसेदेक एक अन्य जाति याजक था। वह परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। मैं उसकी पृष्ठभूमि तो नहीं जानता और न ही यह जानता हूं कि उसे परमेश्वर का ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ। यदि कोई आपको उसकी अधिक जानकारी दे तो वह उसकी कल्पना है। इसी प्रकार प्रभु यीशु के विषय में भी मैं अनेक के भेदों का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वह परमेश्वर है। मुझे तो बस यही जानना है कि वह मेरा महायाजक है। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय के 7 पद में लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। जी हाँ, मलकीसेदेक ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया क्योंकि वह उससे बड़ा था। हम प्रभु यीशु को दंडवत करके उसकी आराधना करते हैं तो हम उसकी महानता को पहचानते हैं। इब्रानियों के पत्र 7 अध्याय के 8 पद में लिखा है, और यहाँ तो मरणहार मनुष्य दसवां अंश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। ध्यान दीजिए, यहां तो मरणहार मनुष्य दसवां अंश लेते हैं, अर्थात लेवी वंश के लोग, वहां वही अर्थात मलकीसेदेक। मेरे मित्रों, आप उसे अपना समर्पण करें तो वह अवश्य आपको स्वीकार करेगा। यद्यपि मैं उसके लिए कुछ नहीं, परंतु मैं आभारी हूं कि वह मुझे स्वीकार करता है। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, तो हम यह भी कह सकते हैं, लेवी ने भी जो दसवां अंश लेता है अब्राहम के द्वारा दसवां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मलकीसेदेक ने उसके पिता से भेंट की उस समय वह अपने पिता की देह में था। ध्यान दीजिए फिर से, लेवी ने भी जो दसवां अंश लेता है अब्राहम के द्वारा दसवां अंश दिया। लेवी वंश अनुवांशिक रूप से अब्राहम में था, अतः उन्होंने मलकीसेदेक को दशमांश दिया। ऐसे ही हमने आदम में पाप किया, अतः हम पाप के कारण मरते हैं, परंतु आज मैं मसीह में होने के कारण सिद्ध हूं। क्या आपको यह बात समझ में आती है? परमेश्वर मुझे प्रभु यीशु में देखता है जिसमें सिद्ध दिखाई देता हूं। मैं उससे प्रिय में ग्रहण योग्य हूं। मेरे मित्रों, यह एक महान आत्मिक सत्य है जो सरल भाषा में व्यक्त है। इब्रानियों के पत्र 7 अध्याय के 11 पद में लिखा है, यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकीसेदेक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए। हारून के याजक वंश की एक बात यह थी कि वह अधूरा था। उसके द्वारा सिद्धता अर्थात परमेश्वर के साथ सहभागिता की परिपूर्णता प्राप्त नहीं होती थी। उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती थी। वह परमेश्वर के समक्ष मनुष्य को ग्रहण योग्य नहीं ठहरा सकता था। उसके द्वारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था। अतः हमें प्रभु यीशु की आवश्यकता पड़ती है। इब्रानियों के पत्र 7 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। हम मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं है। मूसा की व्यवस्था हारून की याजकीय सेवाओं के काम आती है, जहां पशुओं का लहू चढ़ाया जाता था। मूसा की व्यवस्था और हारून की याजकीय सेवाएं साथ साथ थी। तो आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसके 13 और 14 पद को। लिखा हुआ है, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। मेरे प्रियो, यहां पर ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु यहूदा के गोत्र से था, अतः वह इस पृथ्वी पर याजक नहीं बन सकता था। याजकीय वंश के लिए लेवी गोत्र में जन्म लेना अवश्य था, अतः याजक सेवाओं में परिवर्तन की आवश्यकता थी, क्योंकि प्रभु यीशु लेवी वंश से नहीं था। आगे लिखा है इब्रानियों के पत्री 7 अध्याय के 15 पद में, हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मलकीसेदेक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है। आने वाले मसीह के विषय यह भजन 110 की भविष्यवाणी थी। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार नियुक्त हुआ हो, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तू मलकीसेदेक की रीति पर युगानुयुग याजक है। प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के कारण याजक बना, उसका जीवन अनंत है। इब्रानियों 7:18 में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। मेरे प्रियो, यहां पर आप ध्यान दीजिए, मूसा की व्यवस्था पुरानी हो गई थी, अब वह चलन में नहीं है, वह मनुष्य के लिए अवश्य सिद्धता प्रदान नहीं कर सकती थी। इब्रानियों की पत्री 7:19 में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। हम प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के निकट आते हैं। हम जान चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह सदाकालीन याजक है, युगानुयुग याजक है, और वह एक सिद्ध याजक है। हारून का याजक वंश असमर्थ था, अब हमारे पास एक सिद्ध याजक है, और वह है हमारा प्रभु यीशु। उसने आपके और मेरे लिए उद्धार की व्यवस्था की है। परमेश्वर ने हमें आदम में से निकालकर मसीह यीशु में रोपित किया है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5:17 में लिखा है, इसलिए कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। अब हम आदम में नहीं परंतु मसीह यीशु में हैं। हम हारून और मलकीसेदेक की याजकीय सेवाओं की तुलना करेंगे। यहां पर हम देखेंगे व्यवस्था और सामर्थ। व्यवस्था बाधा है, सामर्थ क्षमता दायक है। व्यवस्था आज्ञाएं हैं जो बाहरी है, और सामर्थ जीवन है जो भीतरी है। व्यवस्था देह है और सामर्थ अनंत जीवन है। व्यवस्था परिवर्तनीय है और सामर्थ अपरिवर्तनीय है। दुर्बलता और लाभ रहित या परमेश्वर की निकटता, असिद्धता या उत्तम आशा, ये सब कुछ हम देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 7:20-21 में लिखा है, मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर ना पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। भजन संहिता 110 एक भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह को मलकीसेदेक की रीति पर याजक होने की घोषणा करती है। भजन संहिता 110 के 4 में लिखा है, यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा, तू मलकिसदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु यीशु के याजक होने को सर्वोत्तम सिद्ध करने वाली एक ही बात है, और वह है कि वह परमेश्वर के वचन ही नहीं परमेश्वर की शपथ पर निर्भर है। मेरे मित्रों, संपूर्ण पुराना नियम कहता है कि लेवीय वंश को परमेश्वर ने एक विशेष काम के लिए अलग किया था, उनके लिए परमेश्वर ने शपथ नहीं खाई थी। तब हम आगे पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय के 22 पद में, इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। लिखा है कि वह उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। प्रभु यीशु में हमारे पास एक उत्तम याजकीय सेवा ही नहीं, एक उत्तम वाचा भी है। प्रभु यीशु हमारा महायाजक है, वह एक उत्तम पवित्र स्थान में सेवा करता है जो एक उत्तम वाचा और उत्तम प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। मेरे प्रियो, अध्याय 8 से 10 में हम इस विषय को अधिक विस्तार से देखेंगे। प्रभु यीशु की याजक सेवा हर क्षेत्र में उत्तम है। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु हमारा याजक है, और आज मुझे और आपको भी उसे जानने और पहचानने की आवश्यकता है ताकि हम उसकी सेवा का लाभ उठा सकें। और यदि आज तक आपने उस लाभ को नहीं उठाया है तो आपको उसका लाभ उठाना है ताकि आप उसे और नजदीकी से जान सकें। मुझे आशा है कि आप इसके बारे में अवश्य ही विचार करेंगे। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है।